परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के शब्दों में संत कबीर का एक भजन गाट परिपिया बोले ना हमसे।
दुनिया में गुणियों की कतार लगी है, बड़े बड़े गुणी, एक से एक गुणी। दशरथ में कोई गुण नहीं था। बाल्यकाल में जब थोड़ा होश संभाला तो धनुर्विद्या में उनकी थोड़ा हाथ में हाथ सद गया तो होत सवेर, शब्द भेदी बाण में उनका निशाना सद गया तो होत सवेर उठाया रथ और सीधा जंगल पकड़ा। चिड़िया दिख सुन चिक किया तो मारा बाण धराशाई। मिर्गा पिक बोला मारा बाण तो धराशाई। मिर्गा खाऊं खाऊं किया बंदर तो वहीं मारा बाण वो भी जमीन पर। एक दिन श्रवण कुमार घड़ा भर रहा था और जहां बुड़बुड़ आवाज आई उसने सोचा, दशरथ ने, लगता है कोई हाथी अपनी सूंड से पानी बुड़बुड़ा रहा है। मारा बाण तो श्रवण की छाती में। जब करीब गया तो देखा कि एक विप्र, तो बोले, विप्रवर, मुझसे महान अपराध हो गया। बोले, राजन, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। जन्मा है उसको एक दिन अवश्य जाना है और जाने के लिए कोई न कोई निमित्त होता है। जरा हमारा कार्य कर दें, मेरे माता पिता प्यास से उनको पानी पिला दें, हमारी चिंता छोड़ें। जब दशरथ घड़ा लेके पहुंचा तो माता पिता बोले, श्रवण तुम बोलते क्यों नहीं हो, हमें आशंका हो रही है, तुम नहीं बोलोगे तो हम पानी नहीं पिएंगे। तब बोला दशरथ, दिया परिचय, परिस्थिति बताई। तो बोले, अरे दुष्ट उदंड युवराज, परिस्थिति का अध्ययन किए बिना तुमने बाण चला दिया। एक पितृ भगत, एक संत को तुमने मार डाला। जाओ, जैसे पुत्र वियोग में हम तड़प के मर रहे हैं, तुम भी मरोगे। बाल्यकाल में दशरथ उदंड और बुढ़ोती मरे घड़ी में एक विया नया कर लिया के कई। और बुढ़ोती की औरत ज्यादा ही कुछ कामनाएं करती है। एक बार केकई मचल गई तो चरणों में प्रणाम किया माथा टेक के दशरथ ने, तुम खुश हो जाओ। फिर बाद में बोले कि बोलो, कहु कई नृपय निकाशो देशु, कहु कई रंग कहीं करो नरेशु। मान लो उसने कह दिया कि जो प्रभु नगर वाले तिवारी लोग हैं इनको बंबई खाली करवा दो, तो दशरथ जरूर खाली करवा देता। इन लोगों का अपराध इतना ही था कि हमारी औरत नाराज है, जरा खुश करना था। ये तो कोई विवेकी पुरुष के लक्षण नहीं है। तो के कई सदी सदाई थी, बोले, कल जो अभिषेक होने वाला है किसी निरअपराध को भेज देना, देश निकाला दे देना, मात्र इतने के लिए कि हमारी औरत नाखुश से वो खुश हो जाए। ये तो कोई यशस्वी लोगों का लक्षण नहीं। तो बोले कि राम, कल नरेश होंगे उनको राजा, और भरत जो रंग है उसको राजा, और राम जो कल राज्य अभिषेक होने वाला उनको वनवास। दशरथ तड़फ के मरने लगे। मरते समय का के कई, हमारी लाश को मत छूना, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, जो वेद की शपथ खाई थी वो व्यर्थ जाए। यदि दशरथ में कुछ भी गुण होता, सूझबूझ होती, विवेक होता तो तलाक क्यों दे दिया अंत में, लगता है कोई भूली तो हुई। लेकिन जब दशरथ मर गए, भरत को समझाते हुए गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत भूपेश पिता तुम्हारा, भयान एहन अब होनिहारा। तुम्हारे पिता ऐसा यशस्वी नरेश न संसार में कभी हुआ है, न है, न भविष्य में होने की संभावना है। विधि हरिहर सुर पति दिशि नाथा, सब वर्ण दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु और महेश, इंद्र और दिक्पाल, रात दिन तुम्हारे पिता दशरथ का यशोगान कर रहे हैं। ऐसा यशस्वी नरेश न संसार में कभी हुआ है न होगा। किंतु दशरथ की जीवन वृत्त देखा जाए, जब होश संभाला थोड़ा युवा हुआ तो उदंड बिना बिचारे बाण चला दिया, बुढ़ोती आई तो उदंड एक और शादी कर लिया, वो भी विचारहीन, और अंत में तलाक भी दे दिया, परित्याग भी कर दिया। तो यशस्वी लोगों के लक्षण तो नहीं पाए जाते, किंतु वशिष्ठ कहते हैं कि ऐसा यशस्वी ने है न था, पूर्व में न है न भविष्य में होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे पिता का यशोगान करते हैं। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो दशरथ में एक भी गुण नहीं है, यश सम्मान दिया जा सके ऐसा कोई चरित्र नहीं समझ में आता। लेकिन एक चरित्र था, राम के वियोग में उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो शूर सुपूत सुलक्षण गणियत गुण गरुआई, बिनु हरि भजन इंदारुण के फल तजत नहीं करुआई। शूर हो सुपुत्र हो, इतने गुण हो कि गिने न जा सके, लेकिन एक हरि का भजन नहीं है तो इंदारुण के फल के समान वो कड़ुआ है, त्याग देने में कोई ऐतराज नहीं। इंदारुण का फल देखने में बड़ा सुहावना, लेकिन जबान पर रख दो तो दो दिन तक कड़वाहट बनी रहेगी। शूर सुजान सुपूत सुलक्षण, शुभ जानकार है, ज्ञाता है, सूर है, सुजान है, गणियत गुण गरुआई, इतने गुण की गिने न जा सके, बोझा हो जाए, लेकिन यदि हरि का भजन नहीं तो इंदारुण के फल के समान। दशरथ में बाह्य दृष्टि से कोई गुण नहीं था, लेकिन एक वास्तविक गुण था कि भगवान के वियोग में प्राण भी दे दिया, देने की क्षमता थी। यदि हमें गुणी ही बनना है, एक प्रभु उनके प्रति समर्पण, बस उनके भजन के लिए हमें बहुत कोई टिप टाप नहीं चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण के साथ चलते फिरते उठते बैठते नाम का नाम याद आया करे, सुबह शाम बैठ के अवश्य समय दे। प्रश्न अलग, सरल एक भजन सुनाएंगे तो गांठ पड़ी पिया बोले ना हमते, कबीर का भजन है कि गांठ पड़ी पिया बोले ना हमते, निश्र दिन जागू में पिया तोरी से जिया, नयन अलसाने निकसी गए घर से, गांठ पड़ी पिया बोले ना हमते। जो मैं जनती हूँ प्यारी सियाई है, काहे को नेह लगाती हूँ यही जग से, गांठ पड़ी पिया बोले ना हमते। अपने पिया को मैं वेगी मनई हो, सौ तक शीर होत हरिजन से, गांठ पड़ी पिया बोले ना हमते। सुनी मृदु बचन पिया मुस्काने, कह तो कबीर पिया मिले बड़े तपते, गांठ पड़ी पिया बोले ना हमते। गांठ पड़ने का अर्थ होता है फर्क पड़ जाना। कभी कभी लोगों में फर्क पड़ जाता तो बोलचाल बंद हो जाती है, आपस में नहीं मन मोटाव हो जाता है। संत कबीर ने अपने आराध्य देव को पिया प्रियतम साई कहकर संबोधित किया। साई माने मालिक होता है, प्रियतम प्रिय उत्तम से प्रियतम जो प्रीति का सर्वोपरि माध्यम है, जिनसे संबंध जोड़ लेने के पश्चात फिर कभी विच्छेद नहीं होगा। प्रिया संपूर्ण सदा सदा के लिए जो तृप्ति प्रदान करने वाला है, तुम्हारे आत्मा की प्यास भी बुताने वाला हो और साईं माने मालिक होता ही है, तो गांठ पड़ गई प्रिया बोले ना हमते। भजन आप लाख करो, पूज्य गुरु महाराज के पास कभी कभी प्रोफेसर बीएचयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर पहुंच जाया करें। जंगल में तो पहले अपने वाली बतावे, फिर कहें महाराज साधना नहीं समझ में आती। पूरे विश्व के जितने दर्शन शास्त्र है उन पे हम लोग ही पीएचडी देते हैं, लेकिन भजन नहीं समझ में आता। तो महाराज जी कहें हो, सब बात सब कोई जानता है, दो दो पैसे में वेदांत बिकता है, लोग पढ़ते हैं और लिख तो जाते हैं, न जाने का लिखत है, किंतु साधन ही एक ऐसी वस्तु है जो लिखने में नहीं आती, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी किसी अधिकारी विरही साधक के हृदय में वो जागृत हो जाया करता है। भजन लिखने में नहीं आता, अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही जागृत होता है। लाख बताओ कि ध्यान ऐसे धरो, नाम ऐसे जपो, नहीं, भजन हरि प्रेरित है। जब महाराज की शरण में हम आए, डेढ़ महीना तक तो सन्नाटा था, और डेढ़ महीने के पश्चात एड़ी से चोटी तक आधा आधा इंच की दूरी पर अंग फड़कने लगा और उसी के अनुरूप कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, तो हमने सोचा कोई बीमारी हो गई। तो हमने महाराज से प्रार्थना किया कि महाराज जी कोई रोग तो नहीं हो गया, ऐसे ऐसे फड़क रहा है, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा। बोले बेटा राम रावण युद्ध शुरू हो गया, अब रावण मारा जाए, राम का राज्य अभिषेक हुई, तभी ये बंद होगा। बेटा भजन जागृत हो गया, भजन शुरू हो गया, ये न तो कहने में आता है और नहीं लिखने में आता है। अनुभवी सदगुरु के प्रति मन कर्म वचन से समर्पण और उनके स्वरूप को हृदय में उनके द्वारा बताई साधना को टूटी फूटी जहां पार लगी, तो आंशिक रूप से संचार हो जाएगा, भगवान आपके आपको ग्रहण कर लेंगे। आत्मा से अभिन्न होकर जिस परमात्मा की हमें चाह है वही जागृत हो जाएंगे, रथी हो जाएंगे, आपको उठाएंगे, बैठाएंगे, सुलाएंगे, भजन सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। कब खतरा होने वाला और कब नहीं वो समझाएंगे, उसको समझते हुए आगे बढ़ना भजन है। इसलिए भजन सदैव हरि प्रेरित है, ये कहने में नहीं आता, जिसके हृदय में जागृति वो जानता है। कह जाने जी अपना कैर जनावे पीव, किंतु कभी कभी साधक जब उनके आदेश का उल्लंघन कर देता है तब फर्क पड़ जाता है कि गांठ पड़ी पिया बोले ना हमते, गांठ पड़ गई, भगवान के आदेश का कहीं न कहीं उल्लंघन हो गया है, वो नाराज हो गए हैं, अब उनका उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करना बंद कर दिया। भलाई गांठ पड़ी तो क्यों पड़ी, तो निश्चय दिन जागू में पिया तोरी से जिया, अहर निस रात दिन किसी कह दो सो जाओ तो क्या सोएगा, कभी नहीं। भगवत पथ में ही ऐसा विधान है कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लोलाय, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, सो तो ध्यान धर के चरणों में लो लगा लो, सो के उठो तो सूरत वहीं लगी मिले, ताकि निद्रा में भी कोई अनर्थ न हो जाए। सूरत डोर लागी रहे, सूरत की डोरी लगी रहे, कर्म न टूटे। यही है निश दिन जागना, निश दिन जागूं मैं प्रिया तोरी सहजिया। तो परमात्मा की सहज कौन, तो ज्ञान तखत संतोष बिछौना, सूरत की सहजिया बिछाए लो अंधेरिया में का करी हो, यही उजियरिया में बिछाए लो अंधेरिया में का करी हो। ज्ञान तखत ईश्वर ये आदेश मिले और उस जानकारी मिलती जाए, ये तो है तखत। संतोष और उसके भगवान के आदेश के अनुसार साधना में संतुष्टि मिलती रहे, तृप्ति, संतोष बिछौना और सूरत की सेजिया लगाए लो। सूरत कहते हैं मन की दृष्टि को। यहाँ बैठे हो, अभी मन में ये भाव आ जाए कि तिजोरी का ताला तो खुला है, लड़कुआ कहीं 2 लाख रखा देने बाहे ने कर दे, तो सुनाई नहीं पड़ेगा शब्द। 3600 रंग बरसते हो आपको, कुछ आंखें खुली न तो दिखाई पड़ेगा, कान खुले और न सुनाई पड़ेगा, और वो दृश्य सामने नाचेगा। तो वस्तु नहीं और वस्तु का जो स्केच खींच लेता है, इस दृष्टि का नाम सूरत है, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। तो भगवान का सुमरण भी इस सूरत से ही होता है। सूरत सो गुरु मूर्ति श्वासा में सतनाम। तो भगवान की सैया मन के अंतराल में, जब मन की दृष्टि जब भगवान के चरणों में लग जाए, तो निश्चिन जागूं मैं प्रिया तोरी से जिया। भगवान की सहज कौन, सूरत, मन की दृष्टि उनके चरणों में लगी रहे। नयन अलसाने निकसी गए घर से, लेकिन जरा सा नयन अलसा गए। इन आंखों से तो हम भगवान को देख भी नहीं सकते, उनका आसन तो मन की दृष्टि में लगा हुआ है। भला कौन से नयन नयनों में आलस्य आया, भगवान को देखने वाले नेत्र हैं ज्ञान और वैराग्य के। ज्ञान विराग नयन और गारी, भाव सहित खोजें जो प्राणी, पाव भक्ति मनि सब सुख खानी। ज्ञान और वैराग्य नेत्र है, ज्ञान जो प्रभु प्रदत्त करते हैं, उसकी भली प्रकारी स्टडी जानकारी, आत्मा की आवाज को परखना और समझना, और देखी और सुनी हुई विषय वस्तुओं में जो लगाव का त्याग है, राग का त्याग है, उसका नाम है वैराग्य। यही नेत्र हैं, ये नेत्र अलसा गए, आदेश मिला उसमें कुछ अवहेलना हुई, और वैराग्य का खत्म होने का अर्थ है कहीं राग जुड़ गई। तो नयन अलसाने, ये जो ज्ञान और वैराग्य के जो नेत्र है उनमें थोड़ा आलस्य आ गया, उनके निर्वाह करने में थोड़ा हल्कापन आ गया, प्रमाद आ गया। जहां नयन अलसाने तो निकसी गए घर से, जिस सूरत में हम प्रभु को पकड़ रखते थे मन की दृष्टि में, वहां जहां राग हुआ वो पकड़ में आ गया, और हृदय से भगवान चले गए। ओ गांठ पड़ी पिया बोले ना हमते, इसलिए भगवान और हमारे बीच में फर्क पड़ गया। अब उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करना बंद कर दिया। तो भला नयन क्यों अलसाए, नयन कैसे अलसाए, जो मैं जनती हूं प्यारी सियाई है, काहे को नेह लगाती हूं यही जग से। जो मैं ये जान लेती कि भगवान ही जरा सा जगत की ओर ताकने में रूठ जाएंगे और अपना महिमा समेट लेंगे, यदि मैं ये मुझे पूर्व आभास होता, जरा सा देने बाएं ताकने में भगवान रूठ जाएंगे, तो काहे को नेह लगाती हूं एक जग से, तो भला इस संसार से मैं क्यों संबंध, मन का संबंध जोड़ती। भगवान के चरणों में सूरत लगी, संसार के किसी विषय वस्तु में जहां लगाव हुआ, तो मन तो एक था। तुलसी मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन तो एक था, जो सूरत चरणों में लगी थी वो संसार की कुछ विलासिता में भटक गई। और इधर भटकने का अर्थ है कि वैराग्य हल्का हो गया और उधर राग हो गया, यही है नयन का अलसाना। तो जो मैं जनती हूं पिया ऋषि आई है, जरा सी भूल से नाराज हो जाएंगे, तो काहे को नेह लगाती हूं यही जग से, भला इस जगत की ओर मैं दृष्टि ही क्यों घुमाती, लगाव ही क्यों पैदा करता। इधर लगाव पैदा करने का अर्थ होता है भगवान के आदेश की अवहेलना। जो परम राग से रहित अवस्था थी उसमें लगाव राग का जग जाना, यही है नयन का अलसाना। फिर अंत में सावधान, एक बार गुरु महाराज जब अनसुईया वहां, जब शुरू शुरू में घर तो आकाश बाणियों से छूटा, भगवान ने छुड़ाया। शुरू शुरू में गांव के बाहर रहते थे तो लोगों ने कहा, तुम लोग सोचते हो संत जी भजन करते हैं, टीबी हो गई है, घड़ी टल रही है, जब ने मर जाए। महाराज कहें, ये शब्द जब हमारे कान में पड़े तब हमने भगवान से पूछा, क्या प्रभु ये ठीक कहते हैं? तो भगवान ने आदेश दिया, कह दो इनको तुम लगे भर रहो, तुम्हारा भावी बिल्कुल शुद्ध है। फिर महाराज के हमें नहीं पता रहे कि कौन क्या कह रहा है, कौन सुन रहा है, लगे रहे भजन में। आहिस्ते आहिस्ते भक्तों ने वहां कुछ बगीचा लगा दिया। पहलवान थे उस्ताद पहलवानों के, तो पट्टे जितने थे वो सब वहीं देने बाएं आके बगीचा लगाने लगे। बगीचा में बाउर आने लगा, तब महाराज कहें, पहले रोज इच्छा हो कि भगवान जल्दी आदेश दें कि हम ये जगह छोड़ दें, गांव के पास ठीक नहीं, लेकिन भगवान आदेश ही नहीं दें। किंतु जब बगीचा में बाउर आने लगा, तब महाराज कहें कि हमारे मन में ये भाव आया, अब कहीं नहीं जाऊंगा, बाउर आने लगे तो फल आएंगे ही, फल फूल खाऊंगा और भजन करूंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। जरा सा उस बगीचा में लगाव हो गया, उस दिन आदेश मिला प्रयागराज जाओ। तो बड़े सुबह जब प्रयागराज की तैयारी किया तो 5-7 आदमी और साथ में लग गए। आए प्रयागराज तो भगवान से पूछा, भगवान अब क्या करें, प्रयागराज तो आ गए। तो बोले, इन लोगों का साथ छोड़ दो। तो साथ छोड़ दिया, चुपचाप गायब हो गए अकेले। बोले, प्रभु अब क्या करें? बोले, शरीर में जो वस्त्र पहने हो इनको उतार के रख दो। एकदम दिगंबर हो गए। बोले, प्रभु अब? बोले, गंगा किनारे निकल जाओ, बस न जान न पहचान। 2 उपवास 3 उपवास आए दिन की घटना। किसी को स्वप्न में हो कि इन महात्मा की सेवा करो, किसी किसी को आकाशवाणी भी हुई कि इन महाराज की सेवा करो। कोई कोई स्वाभाविक भक्त मिल जाए जो साधु सेवी होते ही हैं सर्वत्र। इन सब सावधानियों के बावजूद भी 2-3 उपवास तो आए दिन की घटना। महाराज पेट के लिए भी भिक्षा नहीं करते थे, इसलिए कि जब भगवान ने हमको साधु बनाया है तो व्यवस्था वो करें, मैं क्यों चिंता करूं। दूसरी बात महाराज ने कहा, एक चौपाई जब हमें याद आया कि मोर दास कहा ही नरे आशा, कहो तो कह करें विश्वास, भला मेरा दास और फिर किसी व्यक्ति की आशा करता है तो भला उसने मुझ पर विश्वास ही कब किया था, इसलिए भला मैं क्यों चिंता करूं। भ्रमण करते करते पहुंच गए एक मधुवापुर आश्रम, अयोध्या से उस पार सरजू उस पार। वहां आदेश हुआ कि यहीं चतुर्मासा करो। वहां जब पहुंचे तो कुछ सदवाई में रंग आ गया, बहुत सी मरती जीती घटनाएं घट गई। तब महाराज ने सोचा लोग कहते थे टीबी हो गई है, घड़ी टल रही है, कब न मर जाए। एक बार गांव से और निकल जाते हम, लोग जान जाते कि हाँ इस सचों के साधु हैं, टीबी नहीं थी। और घर के लिए तैयारी किया। मधुवापुर आश्रम में आकस्मिक घटनाएं घटने लगी। एक व्यक्ति ने कहा, बोले भगवान जाड़े भर आपका धूना मैं तपवाऊंगा। तो बैलगाड़ियों में भर भर के जंगल से लक्कड़ लावे, वो वास्तव में फॉरेस्ट गार्ड थे मिश्रा जी। 4 महीना तो धूना तपाया और जहां शीतकाल बीता कि हेजा आ गया गांव में। 2 लाश उस गांव से जा रही है, 3 लाश उस गांव से जा रही है। और इतने में महाराज को सूचना मिली, बोले महाराज जी मिश्रा जी तो मर गए। बोले अरे साधु की सेवा करे से का फायदा, जिसको मरी जाना था तो भगवान ने उससे हमारी सेवा क्यों करवाई, जो जिंदा रहता उससे करवाते। फिर इन साधुओं की सेवा करे से का फायदा, जो सेवा करे वो भगत जब मरी जाए तब इन साधुओं से का फायदा। फिर कहा करे सचों के मर गए का, जो पता लगा। बोले महाराज जी खटिया से नीचे उतार दिया है, गौदान हो चुका है, कभी कभी श्वास लौट आती है, अब कुछ है नहीं। बोले जल्दी विभूति उठा ले जाके, यदि जियत विभूति पा जाई तो मरी ना। तो ठाकुर के 2 लड़के दौड़े, पहुंच तो गए उनके घर के पास तक, ले अंदर जाने की हिम्मत न पड़े। क्यों, हेजे के कीटाणु उड़ते थे, उस जमाने में दवाई थी ही नहीं, कहीं हमें नहीं हो जाए। तब हल्ला मचाया और रोना पीटना बंद करके उनके लड़के आए। बोले क्या बात है। बोले महाराज ने ये विभूति दिया है। का हाल है। बोले कि कभी कभी श्वास लौट आ रही, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, बंद हो तो ले चले। तो बोले कि जल्दी विभूति लगाओ और खिलाओ। खिलाया और लगाया, आके सूचना दिया कि महाराज से दंडोत कहना कि जियत विभूति पा गए। दोनों ने आके महाराज से बताया तो महाराज ने कहा भागो अब सब अपने घर जाओ। अब गांव भर मिलके किया पंचायत। महाराज ने अल्टीमेटम तो बहुत बड़ा दे दिया कि विभूति पा जाई तो मरी ना, कोई दवाई तो उन्होंने दिया नहीं, बीबी तो हम विभूति तो हम लोग खाते ही रहते हैं दूने पर, मिश्रा जी तो बचना नहीं मरना ही मरना है, किंतु महाराज कहीं चले न जाए, अल्टीमेटम बहुत बड़ा है, आज महाराज रात में जरूर चले जाएंगे, तो ऐसा करो कि हम लोग पहरा दो, कदाचित वो जाने लगेंगे तो हम लोग प्रार्थना करके रोक लेंगे। मिश्रा जी मरे भले मर जाए, मरे जाए जिए का संसार है, लेकिन महाराज बहुत अच्छे इनको रोकेंगे। और दो दो आदमी का पहरा लग गया। तो आस्ते आस्ते कुटिया की तरफ बढ़े तो महाराज उठ के बैठ जाए, धुना सुना खोदे, महाराज के हमारे सीने में धड़कन पैदा हो जाए। बोले कौन खतरा है, आखिर है क्या यहाँ पर बवाल, उठ के बैठ जाए तो खतरा खत्म, वो दुबुक जाए छिप जाए जहाँ वहाँ। 2-3 बार रात भर में ऐसा किया और इतने में सवेरा हो गया, लोगों ने आके भीड़ लगा ली, पूरा गांव आके बैठ गया, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में लोग रोड की ओर झांक लिया करें कि मिश्रा जी के गांव से कोई आदमी आवे तो पूछ ले मरे कि जिए। 8:30 बजे करीब एक आदमी हल्ला मचाया, बोले अरे महाराज जी मिश्रा जी तो वो चले आ रहे हैं, बैलगाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, उनका लड़का गाड़ी चला रहा है। तो पूरी भीड़ सन्न देनो रोड में आ गई। तो वास्तव में वो आए, आके प्रणाम किया, बोले महाराज जी रात भर आप हमारी खटिया पर बैठे थे, सिर से एड़ी तक आप हाथ घुमा रहे थे, आप कह रहे थे घबड़ो ना बेटा मैं आ गया हूं तू मरेगा नहीं, और थोड़ी सी सुबह हमारी आंख लगी, आप कब चले आए इतने जल्दी। तब वो ठाकुर वे बोले महाराज रात भर हम लोगों ने पहरा दिया, आप यहीं धुना खोदते रहो, बैठे रहो। बोले करे काहे पैरा देते रहो। बोले महाराज हम लोग सोचे कि मिश्रा तो बची है ना, महाराज अच्छे दिन भागने लगेंगे तो रोक लेंगे। बोले अरे कपटी कहीं के। एक बार कीर्तन हो रहा था, महाराज ने कहा यार कीर्तन बंद करो, कोई दुखी आदमी आ रहा है। रात को 11 बजे उसका काम होई होई ना, हम ये अशुभ समाचार उससे न कहब, तुम लोग बता देना। इतने में जंगल से लालटेन दिखाई पड़ी, 4 व्यक्ति आए। बोले लखनऊ में लड़का पढ़ रहा है महाराज, एक घटना सी घट गई, लड़का जी कि ना, तो लोगों ने समझाया कि तुम जाओ। महाराज ने पहले बताया कि तुम लोग अब तुम्हार काम न हुई। इस तरीके की बहुत सी घटनाएं घटी। तो महाराज के हमारे मन में ये भाव आया, अब तो सदवाई में 4 चांद लग गए हैं, लोग कहते रहे टीबी हो गया, अब जरा गांव वालों की ओर से घूमाऊं, वो भी देख लें कि साधु कैसा होता है। और जहां उठ के चलने की तैयारी किया तो भगवान ने मना किया, जाना मत। 1 महीना तक मन रोज भागने के लिए कोशिश करे कि गांव की ओर चलें, जरा सदवाई दिखा दें। और 1 महीना तक भगवान रोज मना करते रह गए। एक दिन एक चमर पागे घोड़े के बाल का किसी भगत ने चढ़ा दिया, तो बोले ठीक ये चमर गुरु महाराज को दे दूंगा, वो अपने टूटे ही टांग पर मक्खी उड़ाया करेंगे और गांव वाले भी देख लेंगे। अब सुगन हो रहा है, भगवान मना कर रहे हैं और चढ़ गए ट्रेन में। गाड़ी में भी बराबर मना हो रहा, चले गए अपने स्टेशन पर। जहां ट्रेन रुकी तो आकाशवाणी हुई, आ तो गए हो लेकिन जमीन पर पांव मत रखना, नहीं तो रोने को आंसू नहीं मिलेगा। 24 मिनट गाड़ी रुकी, जहां पैसेंजर गाड़ी खुटुर खुटुर आगे बढ़ने लगी, तो महाराज कहें हमारे मन में ये भाव आया कि अब तो हमें कहीं जाना नहीं, ठीक है गांव नहीं जाऊंगा, इधर से उतर के ऐसे निकल जाऊं ताकि कोई तो भेटा जाए देख तो ले, फिरो कोई भेटा जाए, ये भाव बना हुआ है। चलती गाड़ी से उतर गए, महाराज कहें हो हम चोटाऊ गए, ट्रेन तो निकल गई, हमारे हृदय से एक पुतला निकला और हाथ से इशारा किया कि जाओ घर जाओ, तुम साधु नहीं हो सकते। दोबारे फिर निकला, तिबारे फिर निकला और बोले वो घर दिखाई दे रहा है। तो महाराज कहें कि रेलवे पटरी है ना, उसके इस पार गांव की सीमा और उस पार दूसरा गांव, तो तुरंत जंप करके उस पार हो गए ताकि भगवान खुश हो जाए, लेकिन नहीं। तब चल दिए जिधर मुंह था उधर ही। बोले भगवान अभी हमको किसी ने नहीं देखा है, मैं अभी चला जा रहा हूं। बोले ना तुम साधु हो ही नहीं सकते। भजन करने लगे तो बड़ी जोर से अपशगुन हो, बोले ना तुम घर जाओ। दिन के 4 बजे से रात को 11 बजे तक खड़े रहे, रोते रहे आंसू ने बंद हो, फिर भी वो गांव के करीब, गांव का स्टेशन, ले किसी कोई उधर आया ही नहीं, भगवान की व्यवस्था है ना। जब भगवान कहीं जाने नहीं दिया तो रात को 11 बजे अपनी कुटिया में आए, जिस कुटिया में पहले भजन करते थे। और एक कुत्ता ऐतल गैतल जब भजन करते थे तब आ गया था, तो महाराज तो चले गए लेकिन वो वहां बैठा हुआ था। महाराज को देखते ही चरणों में लौटा और 5 बार गांव गया और लौट के आया। किसी के खटिया पे कूद जाए जो आने जाने वाले भगत थे, किसी की चादर पकड़ के घसीट दे, तो लोगों ने कहा यार आज कुइरा कुत्ता बड़ा खुश है, कहीं संत जी ने आए हो, चलो देखा जाए। आके लोगों ने देखा तो आंसू बह रहे थे। बहुत कुछ लोगों ने खोदा, महाराज कहे बोले की हिम्मत ही नहीं, 1.5 साल तक रोते रह गए। कोई आवे मौका रहे तब तो पानी से हम मुंह धो लें, मौका न रहे तो फिर आंसू पोंछ लें। भगवान रोज कह के जाओ घर जाओ, तुम साधु नहीं हो सकते। बोले भगवान चाहे प्राण निकल जाए लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दे, हमसे बड़ी भूल हुई। 1.5 साल में सुनवाई हुई, अब तो कभी नहीं आओगे? बोले कभी नहीं। तो अनुभव में बोले थूको और चाटो, तो थुकवाया और चटवाया। इसी वक्त उठो और चल दो। उस वक्त रात को 2 बजे थे। 2 बजे प्राय महाराज उठ के भजन बैठ जाते थे। जहां उठ के चले तो उतनी रात को भी एक आदमी टकरा गया। बोले संत जी कहां? बोले भाई अब जा रहे हैं। बोले भल, आपको यही शोभा है। जब साधु हो गए तो रोनी सी शक्ल लेके यहाँ का मुंह दिखाओ, तो कहीं मर बिलाए जाए का चात्रा। महाराज कहे हो, हम गए थे सदुवाई दिखाने, सब ने हमारी रुलाई देखा। फिर जब निकले तो फिर घूम के ताके तक नहीं, और जब कश्मीर तक चले गए, पुनः साधना जैसे धरी हुई धरोहर हो, पुनः जागृत हो गई, भगवान अनुकूल हो गए, खुश भी हो गए। आज्ञा पालन भजन है। कभी कभी जब भूल हो जाती तो भगवान अपनी बोलने का सूत्र बंद कर देते हैं, तो गांठ पड़ी पिया बोले ना हमते, जरा सी गांठ पड़ गई, भगवान ने कहा इधर मत जाना, और वो उधर चले गए। बात इतनी सी, शरीर से कोई भूल नहीं, अपराध कुछ भी नहीं हुआ, केवल आज्ञा पालन। रेख लांगी सी ये बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई। भगवान ने जो रेखा निश्चित कर लिया, उसका जहां उल्लंघन किया, तो दैव बलवान है, काल की करालता है, जो कुछ है धोखा है। तो अपने पिया को मैं वेगी मनई हूं, शव तक शीर होत हरिजन से, मैं अपने प्रभु को शीघ्र मनाऊंगा। भक्तों से एक नहीं, दो नहीं, 100 भी भूल होती आई है। नारद देव ऋषि का पद पागे, जरा सी भूल उनसे भी हो गई। अहंकार, हम भी जितेंद्रिय हो गए। परिणाम ये निकला कि एक जन्म उनको और लेना पड़ा, लेकिन मैं अवश्य मनाऊंगा। क्यों? लाख भूल हो, लाख भगवान नाराज हो, लेकिन नाराज इसलिए नहीं होते कि तुम नष्ट हो जाओ। पिता इसलिए नाराज नहीं होता कि लड़का सचमुच नालायक है, भगा दूं घर से। कभी घर से भगाता है, कभी ताड़ना देता है उसके सुधार के लिए। उस बच्चे के अंदर और कुछ प्रतिभा छिपी हुई है, उसको निखारने के लिए, न कि नष्ट कर डालने के लिए। तो भगवान इसलिए नाराज नहीं होते कि खो जाए। तो 100 तकसीर हो तो हरिजन से, मैं शीघ्र अपने प्रभु को मनाऊंगा। जहां ये शब्द सुना तो सुनी मृदु बचन पिया मुस्काने। कौन सा मृदु बचन कह दिया? मैं प्रभु को सब 100 काम छोड़ के शीघ्र प्रभु को मनाऊंगा। सब और से विश्वास हटाया, एक टेक और एक प्रण पर जहां आरूढ़ हुआ, स्थिर होके जहां चला, ये संकल्प मन में किया, इस मृदु वचन, बाकी सब वचन कठोर, आत्मा के पथ में अग्रसर होना मृदु, इस मृदु वचन, इस टेक को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए कि बोले अब तो इसके हृदय में केवल मेरा ही आसरा रह गया है। भगवान ने हृदय से ये जाना, प्रसन्न हो गए। तो सुनी मृदु वचन पिया मुस्काने, कहत कबीर पिया मिले बड़े तपते। कबीर कहता पिया मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं, बड़े तप के। मन से इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाने का नाम तप है। इष्ट के अनुरूप खरा उतार दो, ढाल देने का नाम तप है। और ये बड़ा कठिन सौदा है। लाख एक घंटा 1.5 घंटा भजन बैठ के देखो। पहले मन कदाचित ठीक रहता है, उस टाइम बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। इनको इष्ट के अनुरूप ढाल देना, तपा देना, उस कसौटी पर कस देना, जब किसी तरीके से संयत नहीं होता चित्र, तब लोग एकांत शांत बन की शरण लेते हैं। वेशभूषा भी बदलना पड़ता है। कभी कभी ऐसे महापुरुषों को लोग पागल विक्षिप्त समझकर ढेले भी मारते हैं, किंतु हर हालत में जो टेक पर आरूढ़ है वो भगवान को मनाई के दम लेता है। बुद्ध ने 40 उपवास किए, पिया मिले बड़े तप से। महावीर भगवान महावीर सर्पों के बिल पर खड़े हो जाए कि सर्प निकलेगा और काट लेगा, इस भय से कहीं हमारे मन में उद्वेग पैदा होता है कि नहीं? जब मन शांत है, सम है, तो फिर आगे परिणाम क्यों नहीं दिखाई देता? जब बैठ के भजन करें तो कमर हो जाए टेढ़ी, लग जाए पीठ दीवाल से, तब गोदुहन आसन से बैठना शुरू किया, गाय दूते समय पंजे के बल नहीं बैठते हो, अब भला नींद आवे तो कैसे आवे? तो कहत कबीर पिया मिले बड़े तपते, तप की परिपक्व अवस्था, चित अचल स्थिर सम ठहर जाए, तभी तो तपा। भगवान मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं, लेकिन चित्त के निरोध और विलय काल में। इसलिए ईश्वर के आदेश का पालन भजन है। वो आदेश की जागृति ने पुस्तक पढ़ने से, पाठ करने से, कुछ भी करने से नहीं, वो जागृति कोई तत्वदर्शी महापुरुष हो, जीवन मुक्त हो, पूर्णत्व प्राप्त हो, ऐसे महापुरुष की टूटी फूटी सेवा, उनके द्वारा निर्दिष्ट टूटी फूटी साधना, उसका परिपालन करने से, टूटी ही फूटी परिपालन करने से, तथा श्रद्धा से जहां आपके मन की डोरी लगी, सन्न देनो कनेक्शन लगते ही रेले हो जाएगा, जो उनके अंदर करंट है वो आप में रेले हो जाएगा। सदगुरु को दौड़ के नहीं बना लेना चाहिए कि बिना गुरु भवनिधि तरह न कोई, तो तुरंत जाओ गुरु बना लो, हो सकता हो गुरु घंटियाल हो, धोखा हो जाएगा। यदि कदाचित न मिले हो तो सरल उपाय कि संत विशुद्धि मिले परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेहि। विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे राम वो प्रभु कृपा करके एक निगाह जिसे देख ले, उन्हें कौन गरज पड़ी देख ले। अच्छा है कि उनको उनके शरण हो जाओ, उनका सुमिरन करो, एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प समर्पित होकर लग जाओ। जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। चक खाना खाते, सोते जागते, शौच जाते, जीवन के हर मोड़ पर समर्पण और श्रद्धा के साथ नाम याद आया करे। शरण तुम्हारी, तुम्हें छोड़कर अन्य किसी का भरोसा न हो, राम बसौ तिनके मन माही। सर्वांगीण समर्पण के साथ प्रार्थना करो तो जहां आपके और आत्मा के बीच में माया का आवरण पड़ा है, जहां वो पर्दा हल्का हुआ, तो हृदय से भगवान ही आत्मा ही आपके रथी हो जाएगी, मार्गदर्शन करने लगेगी और कह देगी कि वो गुरु महाराज, फिर सदगुरु मिले जाहि जिमी, संशय भ्रम समुदाय, संदेह खत्म भ्रम खत्म। और उस सदगुरु के माध्यम से जहां श्रद्धा से डोरी लगी तो साधना जागृत पहले आंशिक रूप में होती है, जो जो हमारा संयम सदता जाएगा, प्रकृति का संबंध घटता जाएगा, त्यों त्यों ईश्वरीय आलोक बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा भी स्तर आएगा, सगुण हो ही सुंदर शकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। जहां रावण मर गया, सब निशाचरी सेना मर गई, रावण जिंदा था। वो जब दुर्ग से निकला तो अपार सेना लेकर निकला, सब मर गए, अपार अभी जिंदे। कारण कि मोह शकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुशूला। मोह रूपी रावण, और मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, उद्गम है। कदाचित सब टहनियां काट भी दो, लिप्टस का पेड़ ऊपर से काट दो ना, फिर 10 जगह से फूट जाएगा। यदि मूल विद्यमान है तो उसमें पेड़, शाखा, पत्र, पुष्प और फल सब विद्यमान। इसलिए रावण के होते हुए सब विद्यमान, किंतु रावण मर गया तो रहा न कुल को रोहण हारा। इधर मोह का सह अस्तित्व शांत हुआ तो योगा अग्नि से परम प्राकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त हो गए। चिदाकाश में अमृत तत्व की वृष्टि हो गई। मृत कहते हैं नाशवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को, जिसकी मृत्यु न हो, काल से अतीत हो, उस अविनाशी तत्व का संचार हुआ चिदाकाश में। तहां सगुण हो ही सुंदर शकल, संपूर्ण शुभ ही सगुण रह गया, अशुभ का कारण खत्म हो गया। उस टाइम अनुभव पूर्ण होता है और जहां स्थिति मिली, दर्शन स्पर्श और प्रवेश मिला तो राम राज्य, राम का राज्य किसी किसी योगी के हृदय में होता है। और जिस परमात्मा की हमें चाहे और जिस सतह पर हम बैठे हैं, हमारी पुकार ऐसे हो कि वो प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, मार्गदर्शन करने लगे, उसी दिन से भजन की शुरुआत है। आज्ञा पालन भजन है, और आज्ञा का जरा सा भी उल्लंघन किया तो गांठ पड़ी, प्रिया बोले ना हम थे, तो फिर एका जन्म का धक्का लग जाता। एक महापुरुष ने कहा, भगवान के आदेश में घटबड़ मत करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, अन्यथा वो रुष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा रास्ता लंबा हो जाएगा। वो नष्ट करने के लिए नाराज नहीं होते, उसको घेर के रास्ते पे लाने के लिए नाराज होते। इसलिए आज्ञा पालन भजन है, सदगुरु की कृपा प्रसाद से आज्ञा का संचार है। इसलिए सबको गुरु महाराज की शरण जाना चाहिए। ईश्वर एक से सवा कभी हुआ नहीं, एक परमात्मा के शरण जाना चाहिए और सुमरण करो। जो उस परमात्मा का बोध कराता हो, पर सीधा परमात्मा को ही संबोधित करता हो, उनका परिचायक हो, ऐसा किसी दो ढाई अक्षर का नाम ओम अथवा राम, उसका चिंतन करो, जीवन का अंग बना लो। भजन करने के लिए कोई जगह अपवित्र अथवा पवित्र नहीं होती। जगह हमारी तब अपवित्र है जब हृदय से वो स्मृति पटल से जब उनका सुमरण चिंतन जब विस्मृत हो जाए, तब चाहे अतर छिड़के बैठो ना, तब भी अशुद्ध। रावण के दरबार में जब हनुमान पहुंचा तो हनुमान सोचा, ओ सुना था कि स्वर्ग होता है, लगता है यही स्वर्ग है। इतना भ्रम हो गया हनुमान को, स्वर्गिम ऐश्वर्य जुटाए हुए था, लेकिन अपवित्र वो खल, वो दुष्ट, वो निशाचर, सारी डिग्रियां उसके पास। एक सेठ जी थे, भजन में मन लग गया, दुकान दौड़ी चौपट हो गई, घर वाले लगे काऊ काऊ करने। पूछा गुरु महाराज, घर वालों ने तो जीना मुश्किल कर दिया। तो बोले, अरे बेटा कहीं दुकान लगा ले, एक तो कुछ कारोबार शुरू कर ले। तो ऐसी कुठोड़े दुकान लगाया, उस गली से आदमियों का आना जाना था ही नहीं, किंतु भगवान का मन, ऐसी प्रेरणा हुई कि देश क्षेत्र भर का ग्राहक उसी दुकान पर। सेठ के पास चाहे 5 साल का बच्चा भेज दो, सौदा देगा तो बिल्कुल सही देगा, और जो कुछ देगा सच्चा सौदा देगा। एक विश्वास की लहर दौड़ गई। दिन भर बिक्री करते करते, दाढ़ी चलाते चलाते बोले, हे भगवान, कौन पाप प्रकट हो गया, आपका नाम छूट जाना चाहता है। दिन भर की छटपटाहट, जहां शाम को दुकान बंद करे तो लोटा लेके शौच जाने के बहाने निकल जाए इधर नाले में एक तरफ, और नाले में बैठ के टट्टियों फिरता जाए और नामों जपता जाए, राम 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 राम। क्यों? वो जानता था कि जब बैठ के साफ सुथरा होके बैठूंगा कि लो हमारे सेठ की फिर बुद्धि भ्रष्ट होगी, हमें भजन करना, लोगों को तो रिझाना, नहीं रिझाना तो भगवान को। उसे ज्ञान ही नहीं था कैसी जगह में बैठे, उसके तो मन में लौ थी ना। एक बार दीर्घकाल बीता, हनुमान जी की निगाह पड़ गई, बोले, ले ये बनिया बकाल की जात, हमारे परमात्मा का पवित्र नाम को भी अशुद्ध करने में लगा है। यही समय था नाम जपने का? न हो तो थोड़ी सी इसको सीख दे दू। हनुमान जी ने पीठ में एक लात मारा उसको, ताकि मुंह के बल गिर पड़े, दांत वांत एक दो टूट जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। राम राम राम, बिल्कुल शांत। तब हनुमान को जरा रोष आ गया, तुरंत दुपट्टा फेंका, चार ठो दंड बैठक लगाया और जंप करके वो लात मारा कि साला ऐसा कुपात्री रसातल में चला जाए। वो लात मारा जो मेघनाथ की छाती में कभी मारा था, लेकिन बनिया टस से मस नहीं हुआ। अपन डटा रहा राम 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 धुन लगाए हुए। उर प्रेरक तो भगवान है। इतने में हनुमान में प्रेरणा हुई, बोले अरे कहाँ ये कुपात्री के छू दिया, ले हम भी अशुद्ध हो गए। और ड्यूटी में लेट हो रहे हैं, हनुमान कभी सेवा की ड्यूटी में लेट हुआ ही नहीं था। तुरंत एक पल में डुबकी लगाया सरजू में, दूसरे पल में खड़े हो गए भगवान के सामने, ड्यूटी पे हाजिर। भगवान के हल्दी छोपी जा रही थी, करा रहे थे बुरी तरीके से, श्वास नहीं आ रहा था, दवा दारू वैद्य डॉक्टर सब फेल। हनुमान जी पूछे, भगवान हुआ क्या? बोले अरे हनुमान जी पूछो मत, आज लाते लात हम बहुत मारे गए। बोले कौन है अब कौन है संसार में ऐसा जिंदा जो आपकी ओर लात उठावे, जरा नाम तो बताओ, मैं अभी सफाया कर देता हूं। तो बोले अरे हनुमान जी तुम्हीं ने तो मारा था। बोले भगवान इतनी बड़ी भूल भला मुझसे कैसे हो सकती है? बोले क्या वो बनिया को मारा था? बोले भगवान आपको कैसे लग गई? तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जननी माने माता, जनक माने पिता, प्रिय परिवार परम हितेशी धन धाम, सबके अंदर जो ममत्व का संचार है उन धागों को समेटकर रस्सी बनाकर अपने मन को जो मेरे चरणों में बांध देता है। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसा करता है, मैं उसके हृदय में नहीं बसता। वो तो पहले की डिग्री, पहले भगवान को हृदय में बसाओ, किंतु ऐसा सज्जन मेरे हृदय में निवास करता है। तो कवच के रूप में तो मैं था, सारा संबंध तोड़ के वो तो मुझसे डोरी लगा के बैठा था, चारों तरफ तो मैं ही था। जितना ऊंचक ऊंचक के लात मारते रहे वो सब हमी को झेलना पड़ा। बस तुरंत हनुमान भाग के आए, बोले भैया तू ही भजन करने का तरीका तुम्हारा ही बढ़िया है। बोले अरे हनुमान जी आप कब पधारे? बोले अभी अभी हम आके लात मारत रहे नहीं देखे। बोले हमें नहीं मालूम, लगन हो तो इसी तरीके से, अभ्यासी है तो लगन लगेगी, लेकिन ये भी कर लूं वो भी कर लूं वो भी कर लूं और फिर बाद में दो लांछन गुरु महाराज को लगा दो, क्या बताऊं, दया ही नहीं कर रहे, नहीं मन नहीं लग रहा है, फालतू बात। सबके ममता का धागा वहां बांधो और धंधा पानी जो सामने आता हो करते जाओ, त्यागो कुछ भी नहीं, ने काम त्यागो, ने क्रोध ने लोभ ने मोह कुछ मत त्यागो, केवल एक श्रद्धा की डोरी वहां लगा लो, मन क्रम वचन से चलते फिरते उठते बैठते इस नाम याद आया करे समर्पण और श्रद्धा के साथ। आगे त्यागने वाली डिग्रियां भगवान खुद छुड़ा देंगे, स्तर उठेगा तो आगे वाली क्लास में घसीट लेंगे। इसलिए महाराज का आदेश था कि भगवान जब तक आदेश न दें घर छोड़ना पाप है, और जब आदेश दे दें तो घर में रहना महान पाप है, फिर यदि तुम पीछे रहते हो तुम पापी हो, और उधर चलोगे तो अब सेफ्टी सुरक्षा उनकी जिम्मेवारी है। हम चाहें कि पतित हो जाएं, भगवान हमको होने ही नहीं देंगे। हम चाहें कि समुद्र में कूद जाए, हम कूद ही नहीं सकेंगे, हमको होने ही नहीं देंगे। क्यों? ये रक्षा की जिम्मेवारी उनकी। तो जो समर्पण के साथ साधक साधना में लगता है, मद अर्पणम अपने आप को उनके अर्पण करके जो लगता है और फिर कर्म करने में चिंतन करने में कटौती नहीं करता, तो योगक क्षेमम वहम्यहम, उसकी योग की सुरक्षा और आगे योग की व्यवस्था, वो भार भगवान कहते मैं स्वयं वहन करता हूँ। इसलिए श्रद्धा वान लब्धे ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति नचिरेणाति गच्छति। श्रद्धावान और संयत इंद्रिय वाला पुरुष ही मुझे प्राप्त करता है और तत्सन परम शांति को प्राप्त कर लेता है, केवल्य पद प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कुछ त्यागो मत, केवल एक जो प्रभु है उनके प्रति समर्पण के साथ लग भर जाओ, फिर आगे आप में आगे उठने की जब क्षमता आएगी तो भगवान त्याग करवा लेंगे, करना नहीं पड़ेगा। महाराज तो घर की ओर भाग गए थे, भगवान ने पीठ पाट के फिर रास्ते से लगा दिया, तो जाके रथ पर केसो ताका कौन अंदेशो। तो भगवान को प्रसन्न कर लेना सदवाई लाइन की, सदवाई नहीं भक्त के जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। यदि मनुष्य शरीर मिला है इस पर ध्यान देना चाहिए, भजन करके हम कुछ खो नहीं रहे, इसलिए भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत या पिशो पिनर पशु बिनु पोछ बिकान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कोई निर्वाण केवल ये पद चाहता है तो पशु है, फर्क इतना ही है सींग और पूंछ नहीं, बाकी सब फिट। तो चाहे पशु बन जाओ चाहे मानव, ये आपके हाथ में है। बोलो श्री गुरुदेव।